Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Taittiriya Upanishad, presented by Swami Sri Ananda Andaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Vaktishat Sumita Vasal Me Matao Isnimi Vehenu Aap Sarovandhu. Taittiriya Upanishad ko lekar ke प्रसंग चल रहा है। आचार्य मंगलाचरण करते हुए और प्रार्थना कर रहा है कि उस परमप्रता की अनुकंपा से, आचार्य के प्रसाद से, जो इस तैत्तिरीय उपनिषद का विषय है और उस विषय का भी जो सार है, उस सार को उन लोगों के लिए जिनकी रुचि में अब कोई अस्पष्टता नहीं रह गई, ऐसी रुचि वाले अर्थात ऐसी श्रद्धा वाले उन लोगों के लिए हम जो है क्या करने जा रहे हैं, तो कहा तैत्तिरीय उपनिषद जो सार रूप है, उस सार रूप का व्याख्यान करने जा रहे हैं और संप्रणीयते उसका सम्यक रूप से हम प्रणयन कर रहे हैं, ऐसा यहां आचार्य संकेत कर रहे हैं। अब विचार ये करना है कि ये आचार्य बार बार इसी चर्चा क्यों कर रहे हैं। तो ये संसार के अंतर्गत हम देखते हैं और सुनते भी हैं, लेकिन फिर भी उस सुने हुए पर, उस देखे हुए पर अनुभवित जो हमारा विषय, उस पर हमारी एकात्मता निश्चयता नहीं हो पाती। क्या कारण है, हम उसको निश्चय क्यों नहीं कर पाते, जबकि हम जब अपने हृदय को टटोलते हैं, अपने हृदय को देखते हैं, अपनी वृत्तियों को देखते हैं, तो अभिकांक्षा तो हमारी भी स्वाभाविक है और प्राणी मात्र की स्वाभाविक। प्राणी मात्र चाहता है कि मैं अमर हो जाऊं, अमरता प्राणी मात्र चाहता है, और उस अमरता के ही विषय को, उस उपाय को ये समस्त श्रुतियां और समस्त शास्त्र नाना विधि से, नाना प्रकार की शैलियों से, नाना प्रकार के उद्धरणों से, नाना प्रकार की युक्तियों के द्वारा और हमारी तरफ इसका जो है संकेत करते हैं, लेकिन फिर भी इतना सब कुछ होते हुए भी हमारी वह निश्चयात्मिका वृत्ति नहीं बनती। क्यों? तो भगवत पाद आचार्य शंकर ने इस विषय में युक्ति सिद्धांत बतलाते हुए और उस सारे प्रारूप को ही उपस्थित करते हुए बड़ा सुंदर संकेत किया। उन्होंने कहा कि वास्तविकता क्या है, आप अनुभव करते हैं फिर भी अनुभव होता नहीं, और वस्तु स्थिति जो है वो क्या है। तो उन्होंने उदाहरण देते हुए संकेत किया, चिदानंदे का कहा, चिदानंद रूप जो चिदानंद रूप है अर्थात चैतन्य स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है, और केवल प्रकाश स्वरूप नहीं है, कहा आनंद स्वरूप भी है। ऐसे चिदानंद रूप जो है, आनंद स्वरूप जो है, उसमें तो कैसा है, और संकेत एक और शब्द जोड़ा, चिदानंदे सदा, सदा चिदानंदे, जो ऐसा नहीं कभी उसका आनंद रहे और कभी न रहे, ऐसा भी नहीं, जो आनंद निरंतर विद्यमान और कहा जिसका प्रकाश भी निरंतर विद्यमान, ज्ञान भी निरंतर विद्यमान, ऐसा सत्ता रूप जो हो, लेकिन फिर भी उसी में हमें क्या दिखाई देता? कहा उसी में हमें दुख दिखाई दे रहा है, उसी में हमें मृत्यु दिखाई दे रही है। तो ये सब क्यों? तो इसके लिए कहा सदा चिदाकाशे चिदानंदे, जो सदा चिदाकाश है और चिदानंद रूप है, ऐसे उस चिदाकाश में तो क्या हुआ? तो आकाश शब्द से हम लोग जो है श्रवण करते हैं और श्रवण करने वाले इस चीज को जानते हैं कि एक तो हम जानते हैं भूताकाश है। क्या है? भूताकाश। और एक है चित्ताकाश। क्या है? चित्ताकाश। और एक है चिदाकाश। यद्यपि ये तीन नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे व्यावहारिक, हमारे जीवन में इन तीन की प्रतीति होती है। तीन है नहीं, लेकिन तीन न होते हुए भी तीन की प्रतीति हो रही। कहां पर? माइक रूप में, व्यावहारिक रूप में ये तीन आकाश हमको प्रतीत होते। तो चित्ताकाश या हृदयाकाश कहें उसे, और दूसरा भूताकाश, और तीसरा जो है चिदाकाश। अब हम लोग जो है जो इसको श्रवण आदि नहीं करते, शास्त्रानुयायी नहीं है, वो लोग केवल भूताकाश को जानते हैं, वो चित्ताकाश और चिदाकाश की कल्पना करने में असमर्थ होते हैं। लेकिन श्रवण करने वाले इस चीज को जानते हैं कि तीन आकाशों की प्रतीति होती। तो चित्ताकाश, भूताकाश और चिदाकाश। अब यहां पर जो भूताकाश सभी के मत में सिद्ध है, सभी उसको अनुभव करते, उस भूताकाश का ही उदाहरण उन्होंने दिया, उस भूताकाश का ही उदाहरण दिया। लेकिन संकेत क्या किया? इस भूताकाश के अंतर्गत आप जो कुछ भी देख रहे हो, ये वास्तव में यथार्थ में कहां है, कहां इसकी प्रतीति है और क्यों प्रतीति है, कहां है और क्यों है और कैसे है, ये संकेत किया। जिसके कारण, उस प्रतीति मात्र के कारण हम उस अमरता को अनुभव नहीं कर पाते और हम मृत्यु आदि का तो अनुभव करते हैं। तो इसके लिए उन्होंने कहा सदा चिदाकाशे चिदानंदे, माया मेघ तडिन मनः। उदाहरण, माया मेघ तडिन मनः, माने माया, माया क्या है? तो माया को रूपक बनाया, मने माया क्या है तो माया को बतलाया। जो बादल है ना इस भूताकाश के अंतर्गत, वो बादल ही क्या है? कहा वही माया मान लो। माया मेघ और तडिन मनः, तडित माने विद्युत, जो आकाश के अंदर, भूताकाश के अंदर हम विद्युत देखते हैं, वो विद्युत क्या है? कहा मनः, मन है, उसे मन की जगह ले लो। तो मन क्या है? कहा वो विद्युत। और आगे संकेत किया, इतना ही नहीं, आगे कहने लगे अहंता गर्जनम तत्र। अहंकार क्या है? जो मैं करके करता हूं, ये क्या है उस भूताकाश में? तो कहने लगे गर्जन, जो गर्जन है वही क्या है? अहंकार। और गर्जना करके फिर वर्षा होती है, तो ये वर्षा, ये वृष्टि क्या है? जिसकी धारा आती है और उसे हम देखते हैं, इसका तो अनुभव सभी करते हैं, एकदम जो कुछ भी नहीं जानता वो भी इसका अनुभव करता है। तो कहने लगे धारा सारो ही वृत्तया, यह आकाश से जो वर्षा हो रही है उसका जो धारा प्रवाह चलता है ये क्या है, का यही वृत्तियां हैं। और उसके आगे संकेत किया इतना ही नहीं, महामोहांधकारे अस्मिन, और जब भूताकाश के अंतर्गत बादल आते हैं एकत्रित होते हैं, एकत्रित होते हुए जब बादल जो है आपस में टकराते हैं तो क्या है उसमें विद्युत चमकती है, विद्युत चमकती है। और विद्युत कैसे चमकती है, क्षण मात्र को चमकती फिर लुप्त हो जाती हो, फिर चमकती है, फिर बड़ी ही तीव्रता से बड़ी ही चांचल्य रूप में इस विद्युत की चमक होती। और विद्युत चमकने के साथ ही वहां क्या होता, गर्जना होती, गड़गड़ाते हैं बादल, और वही अहंकार शब्द से कह दिया। और वो चांचल्य रूप जो विद्युत का चमकना है वही क्या है, का मन है। और इस प्रकार से फिर क्या होता है, जब उसकी चंचलता विद्युत की चमक मन कह दिया और उसमें गर्जना जो है अहम कह दिया, तो अहम से ही क्या उठती, वृत्तियां उठती। फिर क्या होता है कि फिर जो है वृष्टि होती है, धारा होती, धारा चलती। और जब धारा प्रवाह वर्षा होती है तो क्या होता, चारों तरफ धारा होती, बादल होते, इसलिए पूरे उस भूताकाश में अंधकार जैसी स्थिति हो जाती। ये जो अंधकार है यही क्या है, तो उसी को मोह शब्द से कह दिया है? तो महामोह। और जब ये महामोह रूपी अंधकार हुआ और वर्षा हुई तो उसके द्वारा क्या होता, तो संकेत कर दिया, जब वर्षा होती है तो उससे भींगते हो, और भींगते हो तो ठंड भी लगती। और इतना ही नहीं होता, उस वर्षा के उस प्रवाह से वस्तुएं इधर से उधर भी होती, ठंड भी लगती है, इधर से उधर भी होती हैं, ये सब होता। तो संकेत किया महामोहांधकारे अस्मिन, इस महामोहांधकार के अंतर्गत फिर जब इस प्रकार की स्थिति होती है, और कैसे होती है, तो एक शब्द अब यहां दिया, क्या, महामोहांधकारे अस्मिन देवो वर्षत लीलया। वो जो देव है जिसे अमर कहा, जिसे अमृत कहा, कहने लगे उसी में ये सब क्या हो रहा, कहा लीलया, वो वर्षा हो रही, कैसे हो रही है, तो कहा लीलया, लीला है ये, खेल है, ऐसा संकेत किया। अब कहने लगे ये खेल तो बड़ा दुखदाई है, ये तो दुख देने वाला है, ठंडी देने वाला है, प्रताड़ित करने वाला, इधर से उधर बहाने वाला है, कभी जन्म में ले जाता है, कभी मृत्यु में ले जाता। धारा क्या करती, इधर से उधर बहाना, इधर से उधर पटकना, तो कभी जन्म होना, कभी मृत्यु होना, कभी जरावस्था आ जाना, कभी युवावस्था आ जाना, कभी बाल्यापन आ जाना, ये सब का सब किसके द्वारा हो रहा, उसी वर्षा के द्वारा, ये सब उस देव की क्या है, का लीला है। अब कहने लगे, कहा ये तो है, तो ये तो दुखद है, ये तो हम अमरता चाहते हैं, सुखी होना चाहते हैं, और अमर ही हम हैं, तो फिर ये सब जो है कैसे रुके, इसकी निवृत्ति कैसे हो, इससे हमारा बचाव कैसे हो, तो क्या कहा, प्रबोधैक समीरण अस्या वृष्टेर भ्रमाय, इस वृष्टि का अंत हो जावे, विराम लग जावे, ये वृष्टि रुक जावे, और जिससे जब वृष्टि रुक जाएगी तो ये सब साफ हो जाएगा, आकाश साफ हो जाएगा, और आकाश साफ हो जाएगा तो ये सारे दुख हैं वो हमको नहीं, न तो जब आकाश साफ होगा तो क्या होगा, बादल उसमें रहेंगे, कहा नहीं रहेंगे, कहा उसमें विद्युत रहेगी, कहा नहीं रहेगी। कहा उसमें गर्जना रूप अहंकार रहेगा, कहा नहीं रहेगा। और फिर जो वृष्टि धारा होती थी वृत्ति, कहा वो रहेगी, कहा वो भी नहीं रहेगी। और फिर जो ये लीला हो रही थी, फिर लीला होगी, फिर लीला कहां से हो? वृष्टि का जो खेल चल रहा था, इधर से उधर ले जाना, इधर से उधर ले जाना, वो भी नहीं होगा। लेकिन ये कब होगा, इसके लिए उपाय क्या? तो उसी भूताकाश में क्या आ जाता? वायु आ जाती। उसी वायु के बल से ये हुआ भी है सब। लेकिन वही वायु क्या करती है? सारे बादलों को समाप्त करती है। और जैसे ही बादल समाप्त होते हैं तो ये सारी की सारी प्रक्रिया भी समाप्त हो जाती। इसलिए कहा वो वायु क्या, तो वहां रूपक दिया, प्रबोधिक समीरण। वो प्रबोध रूपी वायु, बोध तो है लेकिन प्रबोध तो प्रकृष्ट बोध। प्रकृष्ट क्या है? तो वही चिदाकाश, चैतन्याकाश, सदानंद। ऐसे उसका बोध यदि हो जाए तो उसके बोध होने से यह बोध रूपी वायु ये सारे के सारे खेल को, ऐसा नहीं क्रम से नष्ट करेगी, एक एक को नष्ट करेगी, ऐसा नहीं, सारे खेल को एक साथ में ही नष्ट। बच्चे खेलते, छोटे छोटे बच्चे हैं, खेलते और खेल खेलते रहते हैं, उसका आनंद लेते, और उनको जैसे ही छुदा लगी तो भाग पड़े, और भाग पड़े और क्या कहते हैं, मनुआ मर गयो खेल बिगड़ गयो। क्या कहते? कहा मन ही मर गया, अब तो खेल बिगड़, चलो, और भाग जाते, समाप्त। तो सब कुछ उनका समाप्त हो गया। ठीक इसी प्रकार से यहां संकेत किया। अब ये सब कहां हो रहा है? तो भूताकाश का उदाहरण दिया, लेकिन ये सब कहां हो रहा? कहा चिदाकाश में। सदानंद रूप जो चिदाकाश, जिसमें वास्तव में ये सब कुछ नहीं, और होते हुए भी उसमें कोई परिवर्तन नहीं। भूताकाश में भी बादल आए, वर्षा हुई, बिजली चमकी, और ये सब हुआ, गर्जना हुई, और गर्जना होकर के वस्तुओं को इधर से उधर प्रवाहित किया, शीतता उत्पन्न की, लेकिन आकाश जो है, भूताकाश ही जो है, उसमें क्या बना और क्या बिगड़ा? उस भूताकाश में उन बादलों से, या उस विद्युत से, या उस गर्जना से, अथवा उस प्रवाह से, उस जल की शीतता से, उस आकाश का क्या बिगड़ा? भूताकाश का क्या बिगड़ता? उसमें कोई बदलाव, उसमें कोई परिवर्तन, उसमें कोई न्यूनता या उसमें कोई अधिकता होती है क्या? तो क्या कहते हो? कहा उसमें किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन। जब आप देखते हो किस भूताकाश के अंतर्गत ये सब कुछ आता है और चला जाता है, लेकिन आने जाने पर और उसके द्वारा सारी क्रिया होने पर भी वह हमेशा भूताकाश अविक्रिय, निष्क्रिय और जो है असंग बना रहता है, उसमें कुछ बनता और बिगड़ता नहीं। ये भूताकाश का उदाहरण दे करके फिर क्या कहा? कहा ठीक इसी प्रकार से जैसे यहां पर बादल आने आते हैं, वैसे इस चिदाकाश में माया आती है। चिदाकाश में क्या आती है? कहने लगे माया आ गई, और माया आ गई तो जैसे फिर वहां बादल आते हैं तो विद्युत चमकती है, तो कहने लगे माया के आने पर मन आ जाता है। ये जो चंचल मन है, तो जैसे विद्युत चंचल है वैसे ही क्या है, ये मन भी चंचल, ये मन आ जाता है। और मन आते ही क्या है, वहां विद्युत जब चमकती है तो बादल टकराते हैं, तो उस चमक के साथ ही गर्जना भी होती, तो वहीं पर ये अहम भी आ जाता। और अहम आ जाता है तो अहम जैसे ही आता और बादर टकराते हैं तो बादर फिर वृष्टि करने लग, तो उसी अहम में से नाना प्रकार की वृत्तियां निकल पड़ती। मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, मैं पंडित हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, अमुक कुल का हूं, पुराने कुल, ये सारी की सारी वृत्तियां, यह मेरा है, ये उसका है, ये सारा का सारा जो वृत्ति प्रवाह है वो उसी अहम से आ गया। और ये आया तो जब ये सब संगठन हुआ तो क्या हुआ, इसी का नाम, सारे संगठन का नाम ये महामोह। महामोह का मतलब तो मोह शब्द बनता ही है मोह वैचित्र अर्थ में धातु से, जहां पर विचित्रता देख ली। वैसे तो चित्र में ही क्या होता, चित्र क्या होता, जिसे आप चित्र कहते हो वो चित्र क्या है, हां नकली, माने उसकी अपनी निजी कोई सत्ता की है। आपने बढ़िया वृक्ष बना दिए, पहाड़ बना दिए, नदी का प्रवाह कर दिया, भगवान राम को खड़ा कर दिया, है साथ में लक्ष्मण सीता को खड़ा कर दिया, ये सब कर दिया, लेकिन जहां पर वह चित्र है वहां पर आपने नदी भी बनाई, वृक्ष भी बनाए, तो नदी का स्वभाव क्या है, जल प्रवाह होना, और जल प्रवाह जहां होगा तो वहां पर क्या है, सिक्तता होगी, आर्द्रता होगी, लेकिन जहां चित्र है वहां ये कोई गुण है नहीं है, लेकिन फिर भी क्या है, प्रतीति तद्रूप की हो रही। तो चित्र क्या है, चित्र केवल दृष्टि मात्र है, उसमें जो है एक दृष्टि का केवल एक नक्शा मात्र है, उसी में हमने रंगादी दे दी है तो चित्र जैसा लग रहा, लेकिन उस चित्र कभी भी वो चित्र जो है किसी भी प्रकार का विकार उसमें कर पाता नहीं। चित्र में होने वाली नदी कभी भी उस है अपने अधिष्ठान को कभी भी भिगो पाती नहीं, कि भिगो देती नहीं, भिगो पाती। वृक्ष बनाए, बढ़िया फल लगे हैं, उन फलों का स्वाद वृक्ष के स्वाद चित्र वाले का मिलता है क्या, का नहीं मिलता। ये केवल क्या है, कहने लगे केवल खाली पुलाव। ठीक इसी प्रकार से यहां तो कह रहे चित्र ही नहीं, विचित्र। और विचित्र का मतलब जिसमें चित्रता भी न हो उसका नाम है विचित्र, माने चित्र का लक्षण भी जिसमें संभव न हो उसे क्या कहोगे, विचित्र। विगत चित्रता इति विचित्र, जहां पर चित्रता भी न हो, और जहां चित्रता भी नहीं होगी तो चित्र तो कम से कम कुछ कल्पना करा सकता है ना, कुछ संदेश दे सकता, लेकिन जहां चित्रता के लक्षण भी घटित न हो तो वो क्या करेगा, वो कुछ करने में समर्थ होगा, कुछ करने में समर्थ नहीं होगा। इसलिए कहने लगे विचित्र अर्थात महामोह, वास्तव में जहां कुछ भी नहीं है लेकिन सारे प्रतीति तद अनुकूल करा देता, सारे अनुभव तद अनुकूल करा देता, वो सामर्थ्य उसमें नहीं, तो यही क्या हो गया, महामोह अंधकारे अस्मिन देवो वर्षति लीलया। यह सारी की सारी जो वर्षा हो रही है, वृष्टि हो रही है, जो क्रिया चल रही है, तो कहने लगे कहां हो रही, कहा कोई और दूसरा नहीं, वो जो देव है जिसमें दोतन शक्ति है, जिसमें प्रकाश शक्ति है, जो चिदाकाश है, उसी चिदाकाश के अंतर्गत ये सब क्या है, का लीला। लीला मतलब एक खेल, एक नाटक, इससे अधिक कुछ भी नहीं। कहने लगे ये नाटक तो है लेकिन इसको विराम देना चाहो तो, इसकी निवृत्ति करना चाहो तो, तब संकेत किया एक ही उपाय है, कोई दूसरा है, आप कहते तो हो ऋते ज्ञानान्न मुक्ति, प्रबोधैक समीरण, प्रबोध रूपी वायु के बगैर, अर्थात वायु क्या आ जाए, जैसे वायु उस बादल को नष्ट करती, वैसे ही जहां पर हमारे अहम मैं आदि के अंतर्गत जो ये वृत्तियां उठ रही हैं, जो जहां पर विषयगत ज्ञान का प्रवाह चल रहा है, वहीं पर ज्ञप्तिगत ज्ञान का प्रवाह आ जाए। इसका नाम है प्रबोध। एक तो वृत्तियों में होने वाला ज्ञान जो है विषयगत ज्ञान है, लेकिन अब जिस ज्ञान की संकेत कर रहे हैं प्रबोधई के रूप समीरण, तो उसका मतलब है ज्ञप्तिगत ज्ञान हो। और जैसे ही ज्ञप्तिगत ज्ञान होता है तो का सबकी निवृत्ति हो जाए। जैसे बच्चा ही है मनुआ मर गो खेल बिगड़, सारा का सारा भाग पड़ा अपना चुदा के, और उस खेल से उसे कुछ लेना देना नहीं। जब खेल रहा था तो पूरी आसक्ति थी, बच्चों के साथ झगड़ भी जाता, ये मेरी वस्तु इसको मैं करूंगा है, तुम ये करो। लेकिन और जैसे ही वहां से गया अपने गृह के लिए, चुदा लगेगी तो कहां जाएगा, अपने घर जाएगा, घर पहुंचा मां के पास पहुंचेगा। लेकिन अब खेल से उसका कोई संबंध, ठीक इसी प्रकार से यहां संकेत करते हैं। तो ये जो है वो कहां हो रहा है, तो ये भी संकेत कर दिया एक चिदाकाश। और चिदाकाश में कब हुआ,